नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल की तिथियों पर भारतीय ओलंपिक संघ ने मोहर लगाई। अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होंगे राष्ट्रीय खेल। संसद के शीतकालीन सत्र में जारी गतिरोध को समाप्त करने पर सरकार और विपक्षी दलों के बीच सहमति बनी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पेयजल योजनाओं में आम नागरिकों की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड वन विभाग बेहतर वन प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है। और देहरादून के जिलाधिकारी ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। समाचार प्रभात के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की तिथियों पर भारतीय ओलंपिक संघ ने अपनी मुहर लगा दी है। राष्ट्रीय खेल पूर्व में निर्धारित तिथि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच ही आयोजित किए जाएंगे। संघ के इस फैसले पर प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहले से ही इन तिथियों के अनुसार अपनी तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और ये आयोजन अनेक मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होने वाला है।
प्रदेश के लिए बहुत खुशी की खबर है कि जो पूर्व में तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की यानी कि 28 जनवरी वह निर्धारित हो गई है, जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा गई। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रदेश की मनसा को समझा और प्रदेश की तैयारियों को भी देखा और उस विश्वास के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे, बेहतरीन आयोजन भी करेंगे।
संसद के दोनों सदनों में गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार और विपक्षी दलों के बीच सहमति बन गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल संसद भवन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन का अनुरोध किया। बैठक में नेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पेयजल संबंधित मामलों की शिकायत के निस्तारण के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेयजल योजनाओं में आम नागरिकों की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने को कहा है। सचिवालय में अर्धशहरी क्षेत्रों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तराखंड जल आपूर्ति कार्यक्रम की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में श्रीमती रतूड़ी ने जल आपूर्ति योजनाओं के सोशल ऑडिट को प्रभावी बनाने में विशेष रूप से स्थानीय महिलाओं को शामिल करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने उत्तराखंड जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श फर्म की समय सीमा विस्तार और इस कार्यक्रम की पर्यावरण ऑडिट पर प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन दिया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन पूर्णता और परिणाम रिपोर्ट के लिए परामर्श सेवाओं की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने पौंटा बल्लूपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण कर कार्य प्रगति को देखा। इस दौरान उन्होंने मसूरी बाईपास निर्माण की भी जानकारी ली और अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि आशारोड़ी से झाजरा तक सड़क निर्माण योजना के लिए भूमि अधिग्रहित कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को दी गई है। क्षेत्रीय निवासियों द्वारा अंडरपास की मांग किए जाने पर जिलाधिकारी ने NHAI के अधिकारियों को क्षेत्रीय ग्रामीणों से बैठक कर अंडरपास की व्यावहारिक मांग पर निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस 2024 पर 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 16 परिवर्तनकारी पहलों का भी अनावरण करेंगे। ये पहल समावेशिता, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो सशक्तिकरण के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड वन विभाग बेहतर वन प्रबंधन के लिए कार्ययोजना तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग कर रहा है। कार्ययोजना के मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि गढ़वाल वन प्रभाग की कार्ययोजना तैयार करने में पायलट आधार पर AI का उपयोग शुरू किया है और शुरुआती परिणाम उत्साहजनक हैं। इसकी सहायता से विभाग को बेहतर जैव विविधता संरक्षण, टिकाऊ वन प्रबंधन और वनस्पति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छे विश्लेषण के साथ साथ प्रबंधन के तरीके भी मिले हैं। उन्होंने बताया कि जंगलों के प्रकार और वृक्ष प्रजातियों की संरचना के बारे में एकत्र किए गए क्षेत्र के आंकड़ों के आधार पर उन्नत AI सॉफ्टवेयर के उपयोग से पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बेहतर विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे प्राथमिकता वाली प्रजातियों और विशिष्ट प्रबंधन हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की स्पष्ट रूप से पहचान हो रही है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के अधिकारियों को विशेष प्रयास करने को कहा है। ऋषिपर्णा सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम में श्री बंसल ने अधिकारियों को कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को ध्यान से सुनकर उनका निस्तारण किया जाए ताकि उन्हें भटकना न पड़े। जन सुनवाई में 96 शिकायत प्राप्त हुई। इनमें भूमि संबंधी, भूमि कब्जा, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, मुआवजा वितरण, आपसी विवाद, नगर निगम, पर्यटन, महिला कल्याण, सड़क निर्माण के लिए वन भूमि चिन्हित करने जैसी शिकायतें प्राप्त हुई। एक मामले में चक्राता विकासखंड के ग्राम पंचायत खारसी के गंगासू में क्यारियों और नहरों में 23 वर्षों से मलबा पड़े रहने की शिकायत प्राप्त हुई, जिसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जांच आख्या प्रस्तुत करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए। इस बीच राजधानी देहरादून में एक अनूठी पहल करते हुए पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले युवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही उनके अभिभावकों से भी फोन पर संपर्क कर रही है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले युवाओं के अभिभावकों से फोन के माध्यम से मौके पर ही अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने स्तर पर युवाओं की काउंसलिंग करें और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। आयुष क्षेत्र ने पिछले 10 वर्षों में वृद्धि दर्ज की है और वर्ष 2023 में इसका बाजार $43 अरब से अधिक हो गया है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक ने बताया कि सरकार आयुष क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नायक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब दुनिया भर के अधिकतम देशों में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि निर्यात क्षेत्र भी वर्ष 2014 में लगभग $1 अरब से बढ़कर वर्ष 2023 में $2 अरब से अधिक हो गया है। अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। सरकार और विपक्षी दलों के बीच संसद की सुचारू कार्यवाही को लेकर बनी सहमति, इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। दैनिक जागरण का शीर्षक है, विपक्षी खेमे की दरार से टूटा गतिरोध, संविधान पर 13-14 को लोकसभा व 16-17 को राज्यसभा में चर्चा के प्रस्ताव से सहमति। वहीं अमर उजाला इस खबर पर लिखता है, सत्ता विपक्ष में पिघली बर्फ, आज से बेरोक टोक चलेगी संसद, लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, गतिरोध खत्म करने पर बन गई सहमति। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तिथि पर आयोजन के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की मुहर की खबर को अमर उजाला ने अपने मुख्य पृष्ठ में स्थान देकर लिखा है, उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल, लगी मुहर, IOA की हरी झंडी, 32 मुख्य और 4 प्रदर्शनी खेलों को किया शामिल। वहीं किसानों के दिल्ली कूच से लगे जाम की खबर को ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से स्थान दिया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेटिंग और जांच से वाहनों की रफ्तार थम गई, किसानों के कूच से महाजाम। इसी खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, किसानों का दिल्ली कूच लगा ब्रेक, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बीएड का प्रारूप बदलने जा रहा है। इस खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है, एक वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम जल्द फिर शुरू होगा, 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वाले छात्रों को मिलेगा दाखिला, वर्ष 2026 से बदलेगा पाठ्यक्रम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों की तिथियों पर भारतीय ओलंपिक संघ ने मुहर लगाई, अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होंगे राष्ट्रीय खेल। संसद के शीतकालीन सत्र में जारी गतिरोध को समाप्त करने पर सरकार और विपक्षी दलों के बीच सहमति बनी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पेयजल योजनाओं में आम नागरिकों की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड वन विभाग बेहतर वन प्रबंधन के लिए कार्ययोजना तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है। और देहरादून के जिलाधिकारी ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।